हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्जुन ने अमन की कॉलर छोड़कर जवाब दिया। वो वहाँ से जाने लगा, तभी अमन तेज कदमों से चलकर उसके सामने आ गया। अमन ने ना में सिर हिलाकर कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक्चुअली आंशी पुलिस के किसी सीक्रेट मिशन में उनके साथ है और इसी के चलते वो उसे विधिक राणा के पास गई है। मैं तुम्हें पूरी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर वो आंशी को कुछ नहीं करेगा और तुम्हें पुलिस के अगले एक्शन का वेट करना चाहिए। वो चली गई और तुमने उसे जाने दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुमसे इतना प्यार करती थी, अर्जुन ने हैरानी से कहा। अमन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अर्जुन को शांत कराते हुए कहा, मेरा यकीन करो, वो सही सलामत हमारे पास जल्द ही वापस लौट आएगी। हमें यहाँ आए हुए आज लगभग 20 दिन हो जाएंगे, अब तक तो वो आई नहीं। पता नहीं तुम्हारा ये जल्द ही कब आएगा, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर वहाँ से चला गया। ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो वापस मेरे पास कब आएगी, लेकिन इतना यकीन है खुद पर कि उसे अपने पास वापस लेकर आऊँगा। बस एक बात पता चल जाए वो कहाँ है, अमन ने बुझी आवाज़ पर कहा और फिर वहाँ से सीधा एजेंसी ऑफिस जाने के लिए चला गया। डिनर के बहाने विधिकांशी को यूं शादी के लिए प्रपोज करेगा, ये उसने भी नहीं सोचा था। वो बस जैसे तैसे खुद के इमोशंस को काबू किए हुए थे। उसके बाद विधिक भी आंशी के सामने आकर बैठ गया और खाना खाने लगा। दूसरी तरफ अमन पूरे दिन सोने के बाद शाम के करीब नींद से जगा था। अमन तैयार होकर रूम से बाहर निकला ही था कि चेतन जी ने उसे जाकर बताया, अर्जुन उससे मिलने के लिए आया है। विधिक की आंशी को वहां से ले जाते ही अमन ने अपनी फैमिली और आंशी की फैमिली को वापस बुला लिया था, जिनमें अर्जुन भी था। अर्जुन से बात करने के लिए अमन गेस्ट रूम में पहुंचा। उसके वहां आते ही अर्जुन ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए गुस्से में पूछा, आंशी कहाँ है अमन? मैं बिजी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी फैमिली से तुम ये बहाना देकर बेवकूफ बना सकते हो कि वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई है। तुम इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे और ना ही तुम्हें कुछ पता है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता आंशी कहाँ है, बस ये समझ लो वो जहाँ भी है ठीक है, अमन ने शांत लहजे में जवाब दिया। अमन अपनी आइडेंटिटी अर्जुन के सामने रिवील नहीं कर सकता था और ना ही वो इस बारे में कुछ जानता था। अर्जुन को अमन की आइडेंटिटी पर तो शक नहीं हुआ, लेकिन आंशी कहाँ हो सकती है ये समझते उसे देर नहीं लगी। ऊपर से अमन का चेहरा भी उतरा हुआ था। अर्जुन ने गुस्से में अमन की कॉलर पकड़कर कहा, वो उस क्रिमिनल विधिक राणा के साथ ठीक कैसे हो सकती है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे विधिक के पास भेज दिया। तुम्हें आइडिया भी है वो उसे कितना डरती है? अरे उसने उसके दोस्तों को मार दिया। तुम्हें कैसे पता आंशी विधिक के साथ है? अमन ने हैरानी से पूछा। उसे इस बात का डर था कि कहीं आंशी ने अर्जुन के सामने उसकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर दी। उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो बंदा यहाँ चंडीगढ़ में घूम रहा था तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता हूँ, अर्जुन ने अमन की कॉलर छोड़कर जवाब दिया। वो वहां से जाने लगा, तभी अमन तेज कदमों से चलकर उसके सामने आ गया। अमन ने ना में सिर हिलाकर कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक्चुअली आंशी पुलिस के किसी सीक्रेट मिशन में उनके साथ है और इसी के चलते वो उसे विधिक राणा के पास गई है। मैं तुम्हें पूरी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर वो आंशी को कुछ नहीं करेगा और तुम्हें पुलिस के अगले एक्शन का वेट करना चाहिए। वो चली गई और तुमने उसे जाने दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुमसे इतना प्यार करती थी, अर्जुन ने हैरानी से कहा। अमन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अर्जुन को शांत कराते हुए कहा, मेरा यकीन करो, वो सही सलामत हमारे पास जल्द ही वापस लौट आएगी। हमें यहाँ आए हुए आज लगभग 20 दिन हो जाएंगे, अब तक तो वो आई नहीं। पता नहीं तुम्हारा ये जल्द ही कब आएगा, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो वापस मेरे पास कब आएगी, लेकिन इतना यकीन है खुद पर कि उसे अपने पास वापस लेकर आऊँगा। बस एक बात पता चल जाए वो कहाँ है, अमन ने बुझी आवाज़ पर कहा और फिर वहां से सीधा एजेंसी ऑफिस जाने के लिए चला गया। विधिक और आंशी का डिनर हो चुका था और विधिक उसे जिस मकसद से यहाँ लेकर आया था वो उसने पूरा कर दिया था। डिनर खत्म हो जाने के बाद वो दोनों डेजर्ट एंजॉय कर रहे थे। अचानक विधिक उठते हुए बोला, बटरफ्लाई मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, यू जस्ट कंटिन्यू, कहकर विधिक वहां से बाहर आ गया। विधिक के जाते ही आंशी की नज़र टेबल पर पड़ी तो विधिक का मोबाइल अभी भी वहीं रखा हुआ था। उसे देखकर आंशी के चेहरे पर चमक आ गई तो वहीं विधिक वहीं पर खड़ा आंशी की हरकत को नोटिस कर रहा था। उसने जानबूझकर अपना मोबाइल वहां पर छोड़ा था ताकि आंशी के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगा सके। विधिक का मोबाइल देखकर आंशी ने धीरे से कहा, आई होप ये लॉक ना हो वरना मैं अमन से कॉन्टैक्ट करने का मौका खो दूंगी। विधिक का मोबाइल उठाने से पहले आंशी ने इधर उधर देखा तो विधिक वहां नहीं था। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें काफी बढ़ी हुई थीं। आंशी ने जैसे तैसे करके मोबाइल उठाया और उसे देखा तो वो लॉक नहीं था। तो वहीं आंशी को अपना मोबाइल उठाते देखकर विधिक के चेहरे के भाव सर्द हो गए। सॉरी बटरफ्लाई, लेकिन तुम अपनी टेस्ट में फेल हो गई हो और इसकी सजा हर एक शख्स को मिलेगी, इंक्लूडिंग यू, विधिक ने कोल्ड वॉइस में कहा और तुरंत आंशी के पास चला गया। उसने आंशी के हाथ से मोबाइल छीन लिया था और उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया था। विधिक के चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था कि विधिक अभी उसकी जान ले लेगा।